अब गर्म हम के बताया ही देखिए गर्म में हे मनुष्य जो विद्वान जिसमें सब पदार्थ उत्पन्न होते उस कार्य रूप सृष्टि और उसके गुण कर्म स्वभाव को तथा जिसमें पदार्थ नष्ट होते उस कारण रूप जगत और उसके गुण कर्म स्वभाव को एक साथ दोनों उन कार्यों और कारण स्वरूप को जानता है वह विद्वान नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ शरीर छूटने के दुख से पार होकर शरीर इंद्रिय कर्म अंतःकरण इंद्रिय आदि अंतःकरण रूप उत्पन्न हुई कार्य रूप करने वाली सृष्टि के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इसका सीधा अर्थ है जो यथार्थ ज्ञान को समझ लेता है जो तत्वदर्शी संतों के द्वारा बताए गए यथार्थ ज्ञान को समझ लेता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। आगे देखो 12-13 में कहा है कि जिसने चार अक्षर सीख लिए किसी भाषा विशेष को जान लिया जिसको विद्या होगी अक्षर ज्ञान हो गया उसने विद्वान कह देते हैं और जिसको जिसने वो अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कहते हैं। कहते हैं विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगे उन तक सुनो। ये देखिएगा वही 40वें अध्याय का 12वां मंत्र है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 12। जो मनुष्य अविद्या अनित्य में नित्य अशुद्ध में शुद्ध यही दड़ंगा इसने करना ही था दुख में दुख दुख में सुख अनात्मा में शरीराधि में आत्मबुद्धि अविद्या उसकी अर्थात इसका कोई अर्थ बने है गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासते प्रार्थना उपासना करते। इसका अर्थ ये बनता है कि कोई तो जिसने ज्ञान नहीं उसको अविद्या कह देते हैं जिन अक्षर ज्ञान है उसको उसको विद्वान कहते हैं। अंधतम दृष्टि के रोकने वाले अंधकार को प्राप्त होते हैं जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले विद्याम शब्द अर्थ इनके शब्द के जानने वाले मात्र अवैधिक आचरणरता समन करते हैं वह ऊ भी उससे अधिक अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश हो जाते हैं। इसका अर्थ कोई और है ये दास आपको बताएगा। इसका अर्थ ये बनता है कि जो यथार्थ ज्ञान से अपरिचित हैं वो अविद्या के कारण चाहे उनको अक्षर ज्ञान भी है अक्षर ज्ञान होते हुए भी वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता वो नरक में ही जाता है वो अपना जीवन व्यर्थ करता। अब 13वें में कमाल किया है ये 13वें देखना है ये 40वें का 13वां इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों जो विद्वान लोग हमारे लिए विचक्षरे हमारे लिए विचक्षरे माने व्याख्यान पूर्वक कहते हैं क्या बताते हैं विद्याया पूर्वोक्त विद्या का अन्यत अन्य ही कार्य व फल आहु माने कहते हैं अविद्याया पूर्व मंत्र के प्रतिपादन से की विद्या का अत्यंत अन्य फल आहु कहते हैं। इस प्रकार उन धीराणाम आत्मज्ञानी विद्वानों से यानी तत्व ज्ञान विद्वानों से तत्व ज्ञानियों से उस वचन को हम लोग सुनते थे ऐसा जानो। इसका अर्थ ये सीधा सा बनता है जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको तो विद्या मानते हैं विद्या विद्वान और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं हुआ उसको अविद्वान कहते हैं। लेकिन इसके विषय में तत्वदर्शी संत ही यथार्थ बताएंगे और वो जो हमें बताते हैं उन्हीं से सुनते हैं उन्हीं से सुनो। इसने तो अनुवाद करने का ठेका ले रखा था गलत करने का। अब जो ये वेद को नहीं समझ सके ये अज्ञानी अनाड़ी इनका थोड़ा सा विवरण देते हैं। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश ये महर्षि दानंद जी की अनुपम भेंट बताया करके ये आर्य समाज के आचार्य है और ये देखो इनका चित्र स्वामी जी का। अब इस पोज में देख ले जो बोली आत्मा तो नो सोचेगा ये भगवान ये तो परमात्मा तो मिल रहा महात्मा जी और संस्कृत ये जाने थे ब्राह्मण घर में जन्म था संस्कृत बचपन तक गोट्या करते तो आम आदमी ने नो जान लिया कि वो तो भाई कसूरता विद्वान है और वेदों को सही जाना है। ये देखिए अत सत्यार्थ प्रकाश है, इसमें क्या लिख रखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे संविन्ता है। इसका अर्थ है कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमत, ये उपमा ला रखी आगे पाछे महिमा की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीना नगर पंजाब से। ये प्रकाशित कहां से है, छपा कितने है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गुहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके सातवें समोल्लास में आपको दिखाते हैं, ये सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ 154 पर किसी ने पूछा स्वामी जी से कि ईश्वर साकार है वह निराकार। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि निराकार। 154 पद निराकार बता रहा है, 155 पर किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं। स्वामी जी ने उत्तर दिया करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा, यानी साधना करने से क्या पाप नाश हो जाएंगे? स्वामी जी ने उत्तर दिया नहीं। प्रश्न करने वाले ने कहा फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करेंगे, जब पाप नहीं कटे, पाप कटे बिना दुख दूर हो नहीं, तो भगवान की भक्ति से जब संकट निवारण होगा ही नहीं तो उपासना की आवश्यकता क्या? उत्तर स्वामी जी देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। प्रश्नकर्ता कहता है वो क्या है? फिर स्वामी जी उत्तर देते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता, उत्साह और सहायता मिलना। अब उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब पुण्यात्मा विचार करो, किसी ने वेद का बहुत लंबा चौड़ा बोर्ड ला रखा हो और अच्छी डिग्री लिख रखी है और उससे कोई पूछता है कि हे वैद्य जी औषधि खानी चाहिए या नहीं, वो कहता खानी चाहिए। क्या औषधि रोग काट देंगी? और वो नकली वैद्य ये कहे कि औषधि से रोग नहीं कटेगा, तो प्रश्न करता कहे फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है? वो नकली वैद्य कहे कि औषधि खाने से पहलवान बन जाएगा, तो क्या वह वैद्य है? नहीं, वो तो बादाम घोट के पीनिया पहलवान हो सके है, बस वैद्य नहीं हो सकता। किसी ने साबुन विक्रेता, थोक साबुन विक्रेता का बोर्ड लगा रखा है और उससे कोई जाकर पूछता है कि साबुन लगाना चाहिए कपड़े के, कहां लगाना चाहिए, क्या साबुन मैल नाश कर देगा, छुड़वा देगा कपड़े का? उत्तर मिले कि नहीं, साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़ा सकता। फिर प्रश्नकर्ता कहे कि फिर साबुन लगाने की आवश्यकता क्या है? कि उसे और लाभ है। क्या लाभ है? कि कपड़ा मजबूत बन जाएगा। तो क्या वो कभी उसने जीवन में साबुन देखा या प्रयोग किया है, कभी अनुभव है उसका साबुन का? नहीं, वो नकली गुटके इकट्ठे कर रहा लकड़ी के और पैक करे बैठा निकम्मा और वो ठग रहा है दुनिया ने। अगर ले जा बेसक पर मैल कती नहीं काटे, क्यों? लकड़ी के गुटके उसके पास थे। तो इस प्रकार इनके पास साधना ना तो साधना थी ना ज्ञान था, इसलिए फिर बकवाद बोलेंगे ये, क्योंकि वो कहेगा ठीक से मेरा कष्ट है और कर्म दंड से कष्ट है, मेरा समाधान करो। तो पहले मुंह बंद कर देते थे, कभी प्रारब्ध तब भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध मीन जो कर्म दुख है कर्म में, वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो पाप के कारण होता है। फिर परमात्मा की भक्ति करे कौन, जय जो कर्म दंड है और वो हमने भोगना ही पड़ गया तो भगवान की अस्तित्व समाप्त हो जाता, उसका नाम और निशान मिट जाएगा। अब दिखाते हैं आपको। और ये स्वामी जी वेदों को सत्य मानते हैं, ये देखिए, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दंत ये सब दिन का एक सही है कि वेद में सत्य लिखा है। यदि वेद में सत्य लिखा तो सत्यार प्रकाश में खाक लिखा है, सत्यार प्रकाश में खुद लिख रहा है कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और वेद कहते हैं कि परमात्मा घोर पाप का नाश कर दे। तो वेद सत्य है तो सत्यार प्रकाश क्या है, ये बिल्कुल झूठा प्रकाश है, इसके अंदर टोटली झूठ लिखा हुआ है, या बकवाद लिख रखी है, दूसरों की अर्थहीन आलोचनाएं की हुई है। पुण्यात्मा एक मैं दास एक टीचर है, और ये भी टीचर थे, ये भी आध्यात्मिक गुरु थे, ये दास भी आचार्य गुरु है। और एक टीचर ने क्लास के बच्चों को और गलत सवाल समझा रखा है, कोई गलत प्रश्न हल कर रखा है, तो नए टीचर का फर्ज बनता है उस प्रश्न का सही हल करे। अब उसका विरोध कौन कर सकता है जिन्होंने उस गलत हल किए हुए प्रश्नों युक्त पुस्तकों को बेचकर रोटी रोजी चला रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, वो विरोध किया करते हैं, तुम्हारी पुस्तकें ईबकें को नहीं, और तुमने आज तक दुनिया को इतना गुमराह कर दिया, लोग तुम्हारे जूते मारेंगे, तुमने हमारे बालकों का नाश करवा दिया, जूठे ये गलत पुस्तक अनुवाद वाली पुस्तक हमें बेचते रहे। इस सत्यार्थ प्रकाश के बेचनिया गेला या बनगी, और इन्होंने मिलकर मुख्यमंत्री जी से उसको करका भ्रमित झूठ साच बोल के और क्रोथा कांड करा दिया कि सत्यार प्रकाश की पोल ना खुल जा, कि तुम्हारी रोजी रोटी बंद ना हो जाए। उन्हें ये नहीं लेना देना कुछ नहीं था, समाज का नाश होने लग रहा सत्यार प्रकाश के पढ़ने से, सारी बकवाद भर रखी इसके अंदर, ना ये समाज सुधार में खरा ना वेद ज्ञान में खरा, तो किसी ने शर्मा मारेंगे, फिर लूट ली दुनिया, भ्रमित कर दिए, बिगाड़ दिया सारा समाज इन्होंने। तो पुण्यात्मा इस दास का उद्देश्य यही है कि सत्य कहूं जब तक संसार में रहूं, क्योंकि ये आदेश परमात्मा का है, और देखना ये सत्य कैसी रंग लाएगी, पूरा विश्व याद रखेगा ये भगवान नष्ट हो गए थे, कति बर्बाद हो जाते यदि ये ज्ञान ना मिलता था। अब महर्षि दानंद सत्यार प्रकाश में आपने पढ़ लिया, सप्त में समोल्लास में कहते हैं कि पाप नाश नहीं होते परमात्मा की भक्ति तय। अब वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की सत साधना से घोर पाप भी नाश हो जाते, यही यजुर्वेद उन्हीं का अनुवादित है। ये देख लो, यजुर्वेद ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, ये इनके फोन नंबर है। अब 8वें अध्याय का ये देखिएगा, 8वां अध्याय और मंत्र नंबर 13, इसमें लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, पितर कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, एनस्य एनस्य अनुस्य अवेजनमसि। अब देखो, अब यहां इन्होंने स्वामी जी ने इसका अनुवाद किया हुआ है, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां मित्र शब्द करके गड़बड़ कर गए। आम आदमी न्यू पर डे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। आम पढ़ने वाला व्यक्ति इसको ये सोच, क्योंकि जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रखा वो वेद पढ़ेगा, और वेदों में इसने लिख रखा पाप भगवान काटे को ना, अपराध के नाश कर नहीं सकता। तो यहां वो मित्र शब्द से भ्रमित होकर आगे चल पड़ता है, तो मित्र की कोई महिमा लिखी हुई है। और स्वामी जी ने चतुरता कर रखी है इसी सत्यार्थ प्रकाश में, प्रथम ही अध्याय में, प्रथम समुल्लास में, और 18 पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश 18 पृष्ठ, ये प्रथम समुल्लास, इसमें लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये परमेश्वर की लिए ही बोला है मित्र शब्द, यहां इसने परमेश्वर ही मानकर लिखा है। इसका कारण क्या है कि पहले सन 2004 में 5 में इन आर्य समाज के इन आचार्यों के साथ हमारा एक ऐसे विचारों का मतभेद होने के कारण विवाद शुरू हुआ था, और हम अपने आश्रम से समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से ये लिखा करते थे कि स्वामी जी ये कह रहे हैं सातवें समुल्लास में, और वेद ये बता रहे हैं। हम फोटो कॉपी भी लगाते थे। तो ये आचार्य लोग दुनिया को गुमराह करते हुए समाचार पत्र में निकलवाते थे एक लेजेंड, छोटी सी खबर कि रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता, इसने कौन सी शास्त्री कर रखी है और ये गलत अर्थ लगा रहा है, ये इसको वेदों का क्या पता। कि वहां पर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं लिखा। तो नो इन्होंने बट्ठा बठा रखा था। तो इस फिर दास ने ये बताया कि ये मित्र का अर्थ ये स्वयं ही बता रहा है कि परमात्मा होता है। ये देखिए, इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग में कति माइनस जीरो है, और ये संस्कृत के जानने वाले चतुर शुरू से ही चतुरता दिखाते आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं चतुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, ये संता के निकाम के इनके दे गड़जोट। अब इतना विश्लेषण करने के बाद भी, इतना रूबरू कराने के बाद भी जो इस दास की बातों को नहीं मानता, तो उन चोरों की बातों को मानता चातुरों की, तो कहते वो तो मूड है, वही मरण दे उनके पास, हमने उनकी जरूरत भी को ना। चातुर प्राणी चोर है, ये मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम की इनको दे गड़जोट। इनके कहते उड़े रस्से रस्सा बांधे कज गधके खाएगा और न विनाशे दे। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाषा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये आपको पढ़कर सुनाएंगे। ये 8वां अध्याय और ये 13वां मंत्र है, ये 13वां मंत्र यहां से प्रारंभ, महर्षि दानंद का ही अनुवादित है ये। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध, अपराध माने पाप, एनस्य कहो चाहे पाप को, एनस्य संस्कृत देखेंगे हम, एनस्य माने खुद लिखा पाप, पाप को चाहे अपराध कहो अधर्म कहो, एनस्य माने अपराध के दान। हे मित्र सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, मित्र को हम परमेश्वर बोल रहे हैं, दान देने वाले के पाप के अपराध को, पाप को, पाप के नाश विनाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तव्य साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने पाप के अपराध के विनाश करने वाले हो। पितर कर्तव्य पिता के किए हुए एन से माने पाप के, विरोधाचरण नहीं, पाप के अपराध के, यानी भक्ति से पिता करे चाहे आप करे चाहे कोई साधु संत करे, सबके पाप को नाश करने वाले हो, अच्छी प्रकार करने वाले हो, नाश करने वाले। और आत्म कर्तव्य से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के अवैध जन्म माने नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले हो। अवैध जन्म माने विनाश करने वाले हो। अवैध जन्म माने दूर करने वाले, विनाश करने वाले, छुड़वाने वाले हो। अनस अनस अधर्म के अधर्म यानी अपराध के अपराध, घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। अवैध जन्म माने नाश करने हारे। जानता हुआ मैं और जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान पने में जो करूं, मैं जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, सबके ऐसे माने अपराध के, उन सब पापों के आप दूर करने वाले हो। अवजन माने नाश करने वाले हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। भाई वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी वो सूखा, निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े। इस अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी को ये अज्ञानी ब्राह्मण अपनात्मा देवी पुराण में ये लिखा है छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे कि कलयुग के जो ब्राह्मण हैं, जो सतयुग में राक्षस, सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते, उन कैसे थे, ये आज के ब्राह्मण हैं। तो अन्य प्राणियों की कैसे तिथि होगी, ये समझने की बात है। ब्राह्मण थे अन्य जो वर्ग हैं, क्योंकि ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ और दयावान, नेक नीति, नेक आचरण वाला व्यक्ति माना जाता था। ब्राह्मण मीन गुरु, आचार्य। और जब वो एक राक्षस हो गए तो आम आदमी फिर उनका अनुसरण और हिकायत तो करना है। तो कबीर परमेश्वर के साथ इन जालिमों ने के जुल्म कराए थे। परमात्मा यही वचन सुनाया करते थे जो दास आज आप जी के रूबरू कर रहा है। परमेश्वर कबीर जी की 600 वर्ष पहले सुनाई गई वो अमृतवाणी, जो सभी सदग्रंथों से मेल खाती है। परमात्मा क्या कहा करते थे, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की, वही पड़े पुराने घास। परमात्मा कबीर देव जी, परमेश्वर कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करके चले गए कि जिनके पास सच्चा नाम है, सतनाम, सतनाम को जाप करने का नहीं है, जिनके पास सतनाम सच्चा नाम वो दो अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक गुप्त है तत्व, ये दास बताएगा, जिन्होंने प्राप्त है उनको पता है। जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप का नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, चाहे लाख टन घास पड़े हो सूखा और उसके अंदर एक माचिस की तिल्ली ला दे, उसके चसा के जला के वो सारे को फूक के राख कर देगी और चलेगी तेज हवा, उसको इधर उधर फेंक कर कति क्लियर ग्राउंड कर देगी। तो परमात्मा बताया करते थे कि भाई इस सच्चे नाम से सब पाप नाश हो जाते हैं। ये विरोध किया करते थे अनाड़ी अज्ञानी के कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। परमेश्वर के बारे में जब अन्य महापुरुषों को ज्ञान हुआ, उनका साक्षात्कार हुआ, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक, मासा घटे न तिल बधे है वेदना लिखे जुलेख, साचा सतगुरु मेट करे ऊपर मारे मेख। और ये अज्ञानी कहा करते थे वेदों के विरुद्ध कहानियां सुनाकर हमें मिसगाइड कर गए। यह बात एक सोचने की है कि जो व्यक्ति 154 पृष्ठ पर लिख रहा है परमात्मा निराकार है, 155 पर स्वयं लिख रहा है कि परमात्मा की इस उपासना से परब्रह्म से मेल, उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब निराकार का साक्षात्कार खाक होगा, उसका सिर होगा, को पूछनिया बनते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इन्होंने मलिन कर दी थी। हम इनको विद्वान मान अपनी सोच को समाप्त करके एक तरफ रख देते थे, अपनी बुद्धि को निकाल दिया करते, गुरु जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। और विद्यार्थी का कर्तव्य भी ऐसा ही है। इन्होंने हमारे डिवोशन का मिस यूज किया और जिसका कितना भयंकर परिणाम हो गया कि हम नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान से दूर होकर के बुराइयां में लगे। अब इस बात से विशेष प्रमाण है कि ये व्यक्ति वेदों को सच्चा बतावर अनुवाद कर रहा, अनुवाद में ठीक लिख रहा, क्योंकि अनुवाद तो वो तो वेद इसके नहीं लिखे हुए, वेद तो वेदव्यासी ने लिखे थे, इसने तो अनुवाद किया है। तो ये भांग पिया करता, भांग के नशे में इसने ये नहीं मालूम तू पहले पृष्ठ पर क्या लिखा और दूसरे पर तू क्या लिख रहा है, और वेद में क्या लिखा तू सत्यार्थ प्रकाश में क्या बकवाद भर रहा है। ये भांग पिया करता, ये ओक्का भी पाड़ा करता, ओक्का भी पीता था, ये चाय भी पीता था, ये तमाखू सूंघा करता, तमाखू खाता था, यानी सारे व्यसन जो ना करण के वो यू करा करता। कौन नैसिदानंद, और इसका फीत ला रहा खीबला समाज सुधारक था, युद्ध समाज का नाशक था। और यही कारण है कि दास बुरा बन रहा है, क्योंकि इनकी खाल उतारे बिना पता नहीं लग गई के सांग है। एक बार ना एक कुमार ने एक गद कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी की तरह, उसको साफ सूफ करके और अपने गधे पर डाल दी, और वो गधा गधे ने छोड़ दिया रात ने खेतों में, और गधा अपने खूब बढ़िया फसल खावे और हो गया खच्चर कती मोटा तगड़ा। अब हमारे रखवाले खेतों में किसान रहते थे, वो देखे बस शेर आ गया चांदनी रात में, शेर आ गया, वो बेचारे भाग के घर न आ जाऊं, शेर आ गया शेर आ गया, वो छक्के और वापस चला जाओ। ऐसे चर्चा चलते चलते एक दूसरे गांव, पहले से गांव में एक का कुमार होया करता, दूसरे गांव के कुमार के पास बात पहुंच गई, अब उस गांव में शेर आवे हर सारी फसल खा गया। अब कुमार ने सोची भाई शेर घास घूसता ना खाया करे या कोई और बकवाद पाओगे। वो आया गांव में, उसने पेड़ देखी, गधे की पेड़ थी। वो गांव वाला ने कहा कि भाई वो शेर को ना गांव वाले ने मन रत्न ना बेरा भाई खा जाएगा कत। वो कहने लगा भाई तुम मेरे साथ चलो, इसका फैसला कराएंगे, अब चलते हैं। वो अपने एक दो गधे ले आया अपने गांव में, और खेतों में जहां वो छोड़ता था जिस क्षेत्र में, पेड़ों पर चिढ़ कर बैठ गया रखवाले थे, जो बोला भाई हम ना उतरा तो अब कुमार ने वह गधे छोड़ दिए। अब थोड़ी सी देर में वो गधा ने सुर मिला, वो बोला कर हु हु हु। तो वो जिस पर वो गधा छोड़ रखा था शेर की खाल डाल के, उसने भी सुर में सुर मिला, फिर हु हु करता हुआ उनके पास आ गया, हैं ओंच ओंच करता हुआ, और वो खाल खोल पटक पुटक के डांक ठोकता आया होता है। वो खाल उतरी गई उसके नीचे, तब उस कुमार ने कहा यू खड़ा था रहा शेर भाई, यू गधा था। परमात्मा कहते हैं खरना हो के हरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए गधे पर जो शेर की खाल उड़ा दे गधा शेर नहीं बन सकता। तो वह खाल उतरे पाछत बेरा पटेगा शेर से गधा, और फिर बोली तो बेरा पटे शेर की गधे की बोली, यानी इन संतों की कबीर जी की जो वाणी है इस वाणी तो पता चलेगा कौन भगवान और कौन विद्वान है। ये भांग पिया करता है, ये और दिखाऊंगा एक बार, क्योंकि ये दिखाए बिना इन तो मन अटक हो जाए, और जब तक इनसे मन नहीं हट लेगा इतने एक जगह हम टिक नहीं सकते। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वतनों से हटकर एक परमात्म तत्व में स्थिर हो जाएगी तब तो तू योग को प्राप्त होगा, यानी तब तो तुझे भक्ति मिलेगी, यानी नाम मिलेगा, जब तक तू भगत बनेगा योगी बनेगा, यानी स्टार्ट होगी तेरी भक्ति तब तक। तो इसलिए दास प्रयत्न करता है कि इन सब नकलियों की जो ना खाल उतार के आपके सामने रख दूं, तुम पहचान लो भाई यू शेर सहकोर के में। तो बोली से भी पता लगता है शेर की बोली न्यारी होती है। तो ये यथार्थ ज्ञान जो है शेर की बोली है, परमात्मा और सदग्रंथों का जो ज्ञान कबीर द्वारा बोला गया ज्ञान ये तो शेर की वाणी है, और बाकी जो उनसे नहीं मिलती वो तो नकली सांग है, कति झूठा है। ये देखिएगा आत्म कथा महर्षि दयानंद की, अब देखो इस महापुरुष के बारे में बताने क्यों क्यों, और वेद तो इसका ब्याह रखे थे, वेद तो आत्म रखा करता जो इससे नाम हो रहे हैं दयानंद सरस्वती। यहां देखो आत्म कथा अपने आप लिखी इन्होंने अपने हाथ से, दयानंद सरस्वती प्रकाशक कौन है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर राजस्थान से छपी है। ये है प्रश्न नंबर 22 आत्मकथा। स्वामी जी आप लिख रहे हैं तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके लिए अर्थ माने लिए आगे को चल दिया, यानी जंगल में धक्के खावा था, और जो आसूद सुदी 2 संवत 1913 यानी सन 1856 ये 1857 में हो गया स्वतंत्रता संग्राम में था, ये तो बांग भी पड़ा था। सन 1856 आसोज यानी उतर न हो रहा, आसोज आधे ज्यादा चला जा 56, जैसे अब आसोज उतर रहा है 10वां महीना है। तो सन आसोज सुदी 2 उतरते आसोज की दूज 1953 सन 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वता छोड़ दिए, यानी चावल खाने तो छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के, देखिए इसकी अकल, अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। फिर कहे दुर्भाग्यवश वहां मुझे बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया, सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुद्ध हो जाया करता। अब इसकी अकल देखो, नौकेवन चावल का खाने छोड़ दिए, भांग पीने लग गया, और मैं योग अभ्यास में अध्ययन और योग विद्या में तत्पर, पी के भांग पड़ जाए ला के कड़कते है आंख खुलना 2 घंटे में 6 में 8 में 10 में, तो और जो सोचो भाई महाराज जी तो कसूती दान ला रहे हैं, ये ला के भींग भांग का ठूठा और कड़ ला के बैठ जाए समाधि लाए। तो चाहे मच्छर लड़ो चाहे माखी, क्योंकि उसमें इसको पता ही नहीं आत्मा अल्लाह को नहीं। अब इनके अनुयायी ने कहे हैं कि भाई बाद में छोड़ दी थी इसने। अरे सन 1875 में इसने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और सन 1883 में इसकी टिकट कट गई, यूं मर गया 8 साल बाद। ये देखो ये सन 1883 में इनकी मृत्यु होगी। जन्म हुआ था संवत 1940 में, यानी संवत 1881 में तो इनका जन्म हुआ था। इसके अकॉर्डिंग सन बनता है सन 1824 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु होगी 1940 विक्रमी संवत और सन 1883 में। 9 साल पश्चात यूं मर गया। और वेदों का अनुवाद इसने सन 1881 में 80-81 में किया, यानी कति लास्ट में। अब ये कहते हैं कि इन्होंने भांग पीनी छोड़ दी थी। अरे तो साधना काल में पीवा था, जैसे आज आप जी साधक हैं भक्ति करें और आपको मना किया गया है कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू भांग कभी प्रयोग नहीं करना, और आप जी इस साधना काल में भी प्रयोग कर रहे हो और फिर मृत्यान छोड़ दो आपको छूट जाएगी। क्यों रोटियां छूट जा मृत्यु समय तो दुरुपति होकर मरा करे ऐसा इंसान, और वह इसकी हुई बहुत बुरी तरह। इन्हीं के जीवन चरित्र में लिखा है अंत समय में इसके सारे शरीर पर छाले मुंह पर छाले कति बुरा हाल हो गया, जो दवाई खाओ वह एक रिएक्शन, इसका नमोनिया बिगड़ गया था और जो भी दवाई दे वह उल्टी पड़े, सारा बुरा हाल हो गया। लगभग 30 दिन तक बुरा हाल, सारे शरीर में छाले पड़ गए, तड़फ तड़फ कर माए टट्टी पेशाब निकल के तब इसकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे ही होता है जो, क्योंकि जब तक हम युवा हैं हम बकवाद करण में लगे रहते हैं और जब आता है एंड इस जीवन का इस कहानी का फिर रोते हैं, फिर के बने वो तो अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत अपस्तावा के करे चिड़िया चुगी के। यदि इसने भांग पीणी छोड़ भी दी होती तो सत्यार प्रकाश में यह नहीं लिखता कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह सारे साजबाज मनुष्य भी हैं, वहां पर बाग बगीचे भी हैं, इन वेदों को वहां भी पढ़ा जाता है। अब देखिए वही सत्यार प्रकाश, थोड़ी सी झलक आपको और दिखाएंगे। ये वही सत्यार प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित, ये कहां से प्रकाशित है, ये प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दयानंद नगर दयानंद मठ दीनानगर पंजाब, फोन नंबर इतना है इनका है। और स्वामी ओमानंद सरस्वती के सहयोग से प्रचारार्थ लागत से भी कम ₹25 मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहना मार्ग रोहतक से। अब देखियो 8वें समोल्लास के लास्ट में 197 पृष्ठ पर ये अष्टम समोल्लास पृष्ठ नंबर 97 पर प्रश्न किया किसी ने कि सूर्य चंद्र तारे और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। उत्तर स्वामी जी का, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। सूर्य और चांद पर मान लेंगे हम, चलो यू कहेगा पहले रहा करते, यू तो 125 वर्ष पहले था जब तना थे। अब सूर्य पद कभी हो सकते ना हुए, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं, इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। उत्तर, ये सब भूगोलोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, मनुष्य भी रहे सूर्य पर और अन्य आदि माने और पशु पक्षी भी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा वस्ती है और ये ही सबको वसाते हैं। जिसलिए वास के निवास के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। ये रण के घर हैं, इन्हों के है, इसलिए ये वसु हैं। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इस प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? यानी सूर्य जो पृथ्वी की तरह वसु है तो इसमें भी मनुष्य रहते हैं, और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक पृथ्वी मनुष्य आदि सृष्टि से भरा पड़ा है, तो क्या ये सब लोक शून्य होंगे? कहते हैं क्या ये सूर्य खाली होगा? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो सफल कभी हो सकता है, इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। सूर्य में भी मनुष्य और डांगर ढोर पशु पक्षी घोड़े बाग बगीचे और पदार्थ दाता यानी परमात्मा ने जिस प्रकार सूर्य नक्षत्र धूप भूमि अंतरिक्ष और तत्तरसत सुख विशेष पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं। परमात्मा ने जिस प्रकार सूर्य चंद्र आदि पर पहले कल्प में सुख विशेष पदार्थ ये पानी जल भाई जो है बाग बगीचे सेब संतरे काजू किशमिश उस फल पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, वैसे इस कल्प में भी रचे हैं, भेद किंचित मात्र नहीं। अब क्या कहता है कि प्रश्नकर्ता जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं? प्रश्नकर्ता कहता है कि क्या उन लोकों में सूर्य में जो आदमी रहे हैं वह इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं? स्वामी जी कहते हैं उन्हीं का है, इन्हीं को पढ़ते हैं। जैसे एक राजा की राज व्यवस्था नीति सब लोकों में सम्मान होती है, इसी प्रकार परमात्मा राजा राजेश्वर की वेदोक्ति नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक जैसी है। यानी वेद इस पृथ्वी पर सूर्य पर भी पढ़े जाते हैं। अपनात्मो इस दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं। आलोचना तो वो होती है जो झूठ बोल रहा है, नरे गपोड़ भूडिया छीका कर नंदा चुगली करके उसको हे सिद्ध करना चाहता, वो तो दुष्ट। इन्होंने लिख रखे हैं और हम पढ़कर सुना रहे हैं, इतना सा बात है। आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, अब आपकी मर्जी। फिर भी यू ऐसा ही है तब खूब सत्यार्थ प्रकाश ने सर पर लो और करो उनकी जो वो कहता है उसी तरह, लेकिन दास कहता है वो गलत है, वो रास्ता ठीक नहीं। पुणात्मा ये समय बार बार नहीं मिलता जो आज आपके ऊपर कृपा हुई है। परमात्मा की वाणी से दोती है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रह ज्ञानी। अब परमात्मा क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। कहते हैं सुखदेव जैसी महर्षि ने यही साधनाएं की थी, वेदों उक्त वेदों में लिखी हुई ओम नाम के जाप आदि से, और उन साधनाओं के करने से इस जीव की दुर्गति समाप्त नहीं होती। जैसे एक थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाऊंगा ताकि आपके हृदय में भगवान की यह सत्य कथा और जम जा। ये जो महावीर जैन जी थे इनकी कैसे दुर्गति हुई, ये वेदों अनुसार साधना किया करते थे। पहले महावीर जी का जब जन्म, जिस महावीर जी का जो शरीर बना उससे पहले ये आत्मा मारीचि नामक एक महर्षि हुए और उन्होंने ऋषभ देव जी अपने दादाजी से नाम लिया और ऋषभ देव जी वेदों अनुसार साधना करते, जैसा भी उनको वेदों का समझा था उन्होंने, वेदों वाले मंत्र, वेदों को सतमान कर उसके आधार से साधना करते और करवाते थे। तो उस मारीची वाला जीव ही आगे चल के फिर महावीर जैन हुआ। उसके दौरान उसकी कितनी वीरान मिटी हुई, और ये तो वेदों को जानता है कोई ना, ये नए ऋषि दानंद तो वो वेदों को कैसे जाने थे, ओम का नाम जाप किया पूर्ण परमात्मा का मान के, और साथ में अठ योग जो ब्रह्मा जी को काल ने अलग से ठोप दिया जब वो तो कमल के फूल पर बैठा था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये आकाशवाणी जो तप करने की है ये परमात्मा की है, और वह थी काल की। उसने साथ में अपनी साधना में या और घसोड़ ली, वेदों में कहीं भी तप करने का को नहीं कहा, केवल अपना काम करते करते जो आपका कर्तव्य कर्म है जैसा भी चारों वर्णों में, उस काम को करते करते अपना मंत्र जाप करो, ओम नाम का जाप वेदों में लिखा है। लेकिन ये है ब्रह्म का, इन्होंने मान लिया ये पूर्ण ब्रह्म का, और ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म परम पर ब्रह्म सब कुछ इसी को मान लिया। इसलिए तो कहा कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े दो प्राणी समझे ना सार रहे ज्ञान। एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं इस महावीर जैन की, 5 मिनट का सत्संग है। पुण्यात्माओं, जब तक खेत ठीक से ना समर ले तो आड़ी बीज नहीं बोया अगर जो बुद्धिमान होगा, वो तो खाम का बीज खराब करने वाली बात है। तो दास का प्रयत्न है कि आपके अंतःकरण रूपी इस खेत को कति समार दूं, इसमें कोई अड़ंगा ना रहे, और फिर बीज भक्ति का देखना कैसे उगेगा। और जिनका बीज बो रखा उसको नलाना आवश्यक है, उनका खरपतवार फिर जान जाता है उसको समाप्त करना आवश्यक है। ये देखिएगा एक पुस्तक है जैनियों द्वारा लिखी हुई, आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, ये लिखा है इसका लेखक है प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने ये नाम है, ये नाम है इस पुस्तक का। अब देखो ये उड़ पुड़ हो रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, इनका मूल मंत्र है ओम ओम हरम नमः हरम हरम, आर्यम को ये हरम बोल रहे हैं, जो हम आपको मंत्र देते हैं उसका अपभ्रंश कर रखे हैं, ओम हराम नमः हरम हरम। आओ जैन धर्म को जाने ये एक पुस्तक है, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ से। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ज्यादा नहीं, ये 293 पृष्ठ पे। विशेष प्रकरण ये 293 पृष्ठ पे। प्रश्न है श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर, अन्य 5 नाम हैं, वीर अतिवीर सन्मति महावीर एवं वर्धमान। यहां देखिएगा 293 श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पूर्वा नामक भील की पर्याय से। पूर्वा भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था, उसने सागर सेन मुनि राज से मद मांस मधु को त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रयास से कहां गया? पहले तो धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर वहां से स्वर्ग से कहां गया? भरत चक्रवर्ती की रानी रस्यप देव के पुत्र भरत की पत्नी के गर्भ से, यानी ऋषभ देव का पोता रूप में प्रकट हुआ। चक्रवर्ती रानी भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, फिर स्वर्ग से कहां आया? फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली क्षेत्री जटिल नाम जटिल नाम पुत्र। अब ज्यादा ना पढ़ के हम यहां सुनाएंगे और स्वर्ग में गया फलन का नगोद, इस इतर नगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव का, निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया। अनेक भाव धारण किए जो इस प्रकार है, 1000 आख वर्ष के जीवन, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केल यानी केले के वृक्ष के भाव, और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के शरीर, 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा, और तेरा गजब हो 60 करोड़ बार गधे के जीवन, और 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन है, और तेरा गजब, और 60 करोड़ बार नपुसंक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 30 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। अब पुण्यात्माओं, यो 80 लाख बार तक देवता बने। परमात्मा ने कल अपनी वाणी बताया था, भगवान की वाणी महिदास ने, कि ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हरहट डोर बंदे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हरहट डोर बंदे सब आवे, ये कोटिक करता फिरता देख्या हरहट डोर कहूं सुन लेखा। जब तक आपको ये सत साधना सत मंत्र परम संत पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा नहीं मिलेगा, तब तक आपकी या दुर्गति सदा बनी रहेगी। अब देवता बन गया और फिर बन गया गधा, और वो भी 60 करोड़ बार, और 30 करोड़ बार कुत्ता, आग लगाई से देवता पद के, कुत्ता तो एक जीवन बतेरा सारे दिन, कि गोबर खावे टट्टी खावे, कि गंदा पानी पीवे लठ खावे, टांग टूट जा कीड़े पड़ जा, कोई संभाल दिया कोई ना, उससे आगे के बनाई हो, आगे देखो फिर नरक में गया। यो महावीर जैन का जीव इन साधनाओं को, ये तो जब तक है जब तक इस महावीर से आगे जो महावीर बन के इसने जो काम किया, तो कति सीधे नरक में जान के कुछ बने को नहीं हो। 363 पाखंड पर चला दिए इस महावीर जैन ने, वेदों से भी कोसों दूर ले गया। आगे देखो, 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ, देवता बना। उपरोक्त शरीरों को भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया, आगे सारा ना बताकर मैं बताऊंगा। ये देखो, ये त्रिपुरुष नारायण से श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया, सातवें नरक में गया, फिर नरक में ठोकिया गया, यो या कसर रह रही थी। सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहां गया, ये 295 प्रश्न पर हम पढ़ रहे हैं। आओ जैन धर्म को जाने, इस पुस्तक का यू नाम है। फिर कहां गया, यो सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। अच्छा, फिर ये सारा कुछ हुआ कि यहां दिखाते हैं। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तदंतर नंद कहते जम्बू द्वीप के छत्रपुर नगर में नंदी वर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक बेटा हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया, कहते हैं पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, उसके पश्चात वो आके 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। गदा बने पाछे ने का महावीर भगवान हुआ, यो गदार कुत्ता बन दिया, यू भगवान हुआ। अब यहां तक तो वो जीव महावीर जैन वाला ही जो मारिति के रूप में था, ऋषभ देव से साधन प्राप्त करके मंत्र वो दुर्गति उसकी हुई। आगे देखो भगवान महावीर ने क्या कराया, श्री भगवान महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उत्तर 363 पाखंड मत चलाए। अरे तेरा गजब भैया, अब क्या बताया है कि जब तक योग महावीर जैन नहीं बना उससे पहला तो इसकी वो पिछली साधनाएं चल रही थी जो मारीचि ऋषि के समय इसने ऋषभदेव जी से जो साधना की थी तो वो ओम नाम से और हठ योग से करते थे। उससे ये दुरुक्ति भी वेदों में ओम नाम है, वेदों अनुसार साधना मानते हैं ये अपनी। और महावीर जैन ने तो सारे कबाड़े चला दिए उल्टे फंड पाखंड, आप पहले लिख रहे 363 पाखंड मत चला दिए। तो अब के जैनी महावीर जैन वाले साधना को कर रहे हैं इस पाखंड मत पर जी। क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरी, सुखदेव ने 84 भुगति बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। इसे इसे महापुरुष कहलाए थे उनकी याद दुर्गति हुई। सुखदेव ऋषि जैसे भी गधे की योनियों में गए, तेरी क्या बुनियाद है भोले आत्मा, अभी सत साधना को स्वीकार कर। बोलो सतगुरुदेव।